नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी। मौसम विभाग का दिल्ली में तेज बारिश का रेड अलर्ट, विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा फेलोशिप की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 4 फ्लाईओवर और 9 फुटवेयर ब्रिज का शिलान्यास किया। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज दिल्ली एनसीआर में 13 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम ने दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास पर भी छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान अस्पताल निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में की गई। इससे पहले दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने सौरभ भारद्वाज के साथ निजी ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। श्री भारद्वाज के आवास पर हुई छापेमारी पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, जिसके नेता अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के बचाव के लिए भ्रम फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया है। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के शासन में निर्माण जारी रखने के लिए छोटे छोटे टेंडर या मंत्री स्तर पर स्वीकृत कर आकस्मिक सामग्री खरीद का खेल चलता रहा था। वहीं दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि जब भी इस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई होती है, आप पार्टी के नेता जनता के बीच अलग अलग मुद्दे लाकर मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। ईडी की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा है कि भाजपा ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर जनता के सवाल दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली की वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोदी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सांसद बांसुरी स्वराज भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल कर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस कदम से छात्रों की यात्रा और भी सुरक्षित तथा आधुनिक होगी।
हमने सरदार पटेल स्कूल के साथ में दिल्ली सरकार की बसेस को जोड़ा है और अब इनके बच्चों को पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बसेस घरों तक पहुंचाएगी और इससे जो प्राइवेट कार इन बच्चों को घर लेके जाती थी या जो इनकी अपनी बसेस थी, उसकी जगह ये पॉल्यूशन फ्री बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है दिल्ली की डेवलपमेंट में एक नया माइलस्टोन साबित होने वाला है।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शीघ्र ही सभी स्कूलों में ग्रीन प्रतियोगिताएं शुरू करेगी ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। साथ ही विद्यालयों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा फेलोशिप की घोषणा की है। इस फेलोशिप के बारे में जानकारी देते हुए श्री गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस फेलोशिप के अंतर्गत संसदीय इतिहास और परंपराओं के गंभीर अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाएगा, विशेषकर वीर विट्ठल भाई पटेल के योगदान और व्यापक सुधारवादी एजेंडा पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फेलोशिप शोधकर्ताओं को गहन अध्ययन का अवसर प्रदान करेगी और उनके अनुसंधान और शोध को जन सामान्य तक पहुंचाएगी। विधानसभा पुस्तकालय का डिजिटलीकरण कार्य चल रहा है, जिसे 6 महीने में पूरा कर जनता और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कल संपन्न हुए 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के निष्कर्षों पर भी जानकारी दी।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वीर विट्ठल भाई पटेल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण की शताब्दी का यह आयोजन केवल ऐतिहासिक स्मरण नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित शासन के प्रति नई प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 31 में से 29 पीठासीन अधिकारियों की भागीदारी इस सम्मेलन के ऐतिहासिक सफलता और संघीय एकता का एक प्रमाण है। सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों में दिल्ली विधानसभा द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय विधायी सूचकांक प्रमुख रहा, जो देश भर की विधानसभाओं की उत्पादकता और दक्षता का आंकलन करने वाला एक मानक डेटाबेस होगा। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा 1924 से 1930 के कार्यव्रतों का भंडार तैयार कर रही है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, महिला अधिकार, बाल विवाह और सामाजिक सुधार जैसी ऐतिहासिक बहसें शामिल हैं। इन कार्यव्रतों के माध्यम से लोग विरासत से रूबरू हो सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ दृष्टि पुनियानी, दिल्ली।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 4 फ्लाईओवर और 9 फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य इंजीनियरिंग कार्यों की आधारशिला रखी। इन सभी कार्यों की अनुमानित लागत 282 करोड़ रुपए है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,000 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि देश का राजमार्ग नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। मंत्री ने कहा कि राजमार्ग नेटवर्क का हाई स्पीड कॉरिडोर 93 किलोमीटर से बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गया है और 4 लेन और उससे अधिक वाले राजमार्गों में पिछले एक दशक में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दृष्टिकोण विकसित भारत में योगदान देने के लिए आभारी हैं, जहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा एक सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर समन्वित प्रयास किए हैं, साथ ही कई विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया गया है। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज वस्तु और सेवा कर जीएसटी में और सुधार करने के संबंध में एक व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस सम्मेलन में देश भर के व्यापारी, कर विशेषज्ञ और नीति निर्माता एकत्रित हुए और जीएसटी को अधिक सरल, पारदर्शी तथा व्यापारी हितैषी बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की।
सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने वर्तमान जीएसटी व्यवस्था में व्यापारियों को हो रही कठिनाइयों को बताते हुए सुधार के सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि व्यापारिक जीएसटी संरचना अनुपालन को आसान बनाने के साथ ही जीएसटी संग्रह को बढ़ावा देने और कर आधार का विस्तार करने में सहायता करेगी, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि आयकर भरने को सरल बनाने, कर श्रेणी का तार्किक पुनर्गठन करने, जीएसटी पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करने और छोटे व्यापारियों पर अनुपालन का बोझ कम करने जैसे अनेक मुद्दों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों ने आम सहमति व्यक्त की कि व्यापार में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीएसटी में सुधार करना बेहद आवश्यक है। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर चौक पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिधूड़ी ने कहा कि राजधानी में अब नागरिकों को उनके घर के पास ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मुफ्त जांच, दवाइयां उपलब्ध होने के साथ ही मरीजों के इलाज के लिए वरिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध हैं। श्री बिधूड़ी ने राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। श्री बिधूड़ी ने जानकारी दी कि दक्षिण दिल्ली में अगले महीने अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए केंद्रों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजधानी के दरियागंज इलाके में एक इमारत के ढहने की घटना में कथित तौर पर 3 श्रमिकों की मृत्यु के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग ने आज दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने बताया है कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार इस महीने 20 तारीख को दरियागंज इलाके में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। आयोग ने समाचार रिपोर्ट की विषय वस्तु की जांच की है और कहा कि यदि यह जानकारी सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज शाहदरा उत्तर जोन के घोंडा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सड़क की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। एक रिपोर्ट।
स्वच्छ दिल्ली स्वस्थ दिल्ली का संदेश देते हुए महापौर ने अपील की कि शहरवासी अपने घर और आसपास सफाई रखें तथा निगम की मुहिम में सक्रिय सहयोग करें। इस अवसर पर महापौर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यमुना विहार में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके अतिरिक्त महापौर ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन तथा नालों की सफाई की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए तथा जनता को साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध कराया जाए। महापौर ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ निगम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर दिल्ली को कूड़े से आजादी दिला सकते हैं। इस अवसर पर जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा ने कहा कि स्वच्छता अभियान को मजबूत बनाने के लिए निगम हर स्तर पर कार्य कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि शाहदरा उत्तर जोन को एक आदर्श स्वच्छ क्षेत्र बनाया जाए और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति का नाम एफआईआर से हटाने की एवज में उसने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 1 लाख रुपए रिश्वत लेने पर सहमति बन गई थी। आरोपी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के थाना अशोक विहार में तैनात था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटे में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
राजधानी में भारी बारिश की चेतावनी के बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो सहित एयरलाइनों ने यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा कि आज बारिश के कारण दिल्ली आने जाने वाली उड़ानों का संचालन प्रभावित हो सकता है। एयर इंडिया ने यात्रियों से हवाई अड्डों पर जाने से पहले वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति की जाँच करने को भी कहा है। वहीं स्पाइसजेट ने कहा कि दिल्ली में खराब मौसम के कारण सभी प्रस्थान और आगमन और उनसे उड़ाने प्रभावित हो सकती है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखने का अनुरोध किया है। इंडिगो ने भी यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने का सुझाव दिया है और उन्हें जल्दी निकलने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
विभाग के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली अस्पताल निर्माण घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आवास सहित 13 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी। मौसम विभाग का दिल्ली में तेज बारिश का रेड अलर्ट। विमानन कंपनियों ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा फेलोशिप की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा का शुभारंभ किया और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 4 फ्लाईओवर और 9 फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।